ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक 33। अर्जुन उवाच य अयम् यो अयम् योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं चञ्चलतात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन युवाच योऽयं योगस्तया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलतात् स्थितिं स्थिराम्। योऽयं योगस्तया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलतात् स्थितिं स्थिराम्। योऽयं योगस्तया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलतात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा या अयम् ये पद्धति योगः योग त्वया तुम्हारे द्वारा प्रोक्तः कही गई साम्येन सामान्यतया मधुसूदन हे मधु असुर के संहर्ता एतस्य इसकी अहम् मैं न नहीं पश्यामि देखता हूँ चंचलत्वात् चंचल होने के कारण स्थितिम स्थिति को स्थिराम स्थाई। श्लोक का अनुवाद। अर्जुन ने कहा हे मधुसूदन आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। आप भी बोलिए मेरे साथ। अर्जुन ने कहा हे मधुसूदन आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए सूचो देशे से लेकर योगी परमो मतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कली युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि वो अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योग अभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यावहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं हैं, तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यस्तताओं से विरक्ति का नियमन करती हैं। व्यावहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। भले ही वो कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था, वो राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे, वो महान योद्धा था, वो दीर्घायु था और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे इस ज्ञान हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया है। अतः इस पद्धति को इस कलियुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए ये पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए ये असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गवा रहे हैं। वे अपने अभीष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। अर्जुन उवाच, जो अयं योगस्तया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलतात् स्थितिं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, अपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। इस 6th अध्याय में भगवद गीता का 6th अध्याय में भगवान अष्टांग योग के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को ऐसे समझाया, सूचो देसे, मतलब पहले भगवान क्या बताया अर्जुन को कि योग साधन करने के लिए किसी स्थान में रहना और कैसे योग पद्धति को साधन करना चाहिए। अर्थात भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो योग पद्धति का, इस अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास करना चाहते हैं उनके लिए कोई निराला स्थान में जाना चाहिए, कोई एकांत स्थान में रहकर इस योग अभ्यास करना चाहिए। इस योग पद्धति का 8 अंग हैं, इसके कारण इसे अष्टांग योग कहा जाता है। इस 8 अंग क्या है योग पद्धति साधन के लिए, कल उसका विचार हम किया था। याम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण और समाधि। याम मतलब ये शरीर का शुद्धता, ये शरीर को निर्मल रखना, बनाना, शरीर निर्मल रखने के लिए, बनाने के लिए केवल हमें नहाना और साफ कपड़ा पहनना ही नहीं, हम जो खाना खाते हैं उसके बारे में भी बहुत ध्यान देना चाहिए। मतलब ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिससे ये शरीर का शुद्धता नष्ट हो सकता है। हम जो खाना खाते हैं उस आहार से, उस खाद्य से हमारा शरीर बनता है। शरीर का जो कोष है ये हमारा आहार से बनता है। तो अगर हम गंदा खाना खाया, अशुद्ध भोजन वस्तु को भोजन किया, तो हमारा शरीर भी अशुद्ध बन जाएगा। तो इसीलिए जो खाना जो है वो सात्विक आहार करना चाहिए। याम, उसके बाद नियम, मन को संयम, मन को पवित्र बनाना। मन का कलुष क्या होता है, मन का गंदगी क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। जो व्यक्ति इस अष्टांग योग का अनुशीलन करना चाहते हैं उनके लिए मन को पवित्र बनाना बहुत ही जरूरी है। तो मन को निर्मल करने के लिए हमको ये जो मन का जो गंदगी है वो सारे साफ करना चाहिए, और पाप काम से विरत होना चाहिए। कभी भी कोई पाप कार्य नहीं करना। जो कार्य करने से हमारा चेतना का अधपतन होता है, पतन होता है, चेतना गिर जाता है, वैसे काम कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति साधन करना चाहते हैं तो हमें ऐसा कभी काम नहीं करना चाहिए जो हमारे चेतना को, हमारे आत्मा को नीचे गिरा देता है। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। जय श्री श्री गौर निताय की। और उसके बाद आसन, आसन है शरीर एक यंत्र है, यंत्र रूढ़ानी मायाया भ्रामयन सर्वभूतानी यंत्र रूढ़ानी मायाया। ये शरीर एक यंत्र है जिसको माया ने बनवाई है। जैसे फैक्ट्री में मशीन बनता है, मोटर कार वगैरह बनता है, एरोप्लेन बनता है, वैसे ही माया की फैक्ट्री में ये हमारा शरीर बनता है। और ये शरीर एक यंत्र जैसा है, एक जान जैसा है, और ये शरीर रूप यंत्र से, यंत्र में चढ़कर हम कभी उद्धं गच्छन्ति सत्तस्था मध्ये तिष्ठति राजसा जघन्न गुणवृत्तिश्च अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्गुण की जब प्रभाव अधिक होता है तब हम ऊपर जाते हैं, जब रजोगुण का प्रभाव अधिक होता है तो हम भूलोक में रहते हैं, जो मध्यवर्ती लोक है। मध्य तिष्ठति राजसा और जघन्न गुणवृत्तिश्च अधो गच्छन्ति तामसा। जो तमोगुण की प्रभाव से हमारा वृत्ति जब जघन्य हो जाता है, बहुत गंदा हो जाता है, बहुत गिर जाता है, तब हम नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसे जब हम ऊपर जाते हैं। कैसे ऊपर जाते हैं? शरीर के माध्यम। ऐसे शरीर मिलता है जो हमें ऊपर ले जाता है, मतलब स्वर्गलोक या आदि जो ऊपर का जो सप्तलोक है, सात लोक ऊपर का है, सात नीचे का है। ये हम जो हैं ये भूलोक में है, भूमंडल में है, और भूमंडल के ऊपर और छह लोक हैं, वो है भूवरलोक, स्वरलोक या सर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। भूवरलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये ब्रह्मांड के 14 भुवन है। उसमें से सात है ऊपर का और सात है नीचे का। तल, अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, ये है सप्त पाताल। और ऊपर का है भूर, भुवस्व, महर, जन, तप, सत्य। सत्यलोक में ब्रह्मा जी विराज करते हैं, स्वर्गलोक में देवताओं विराज करते हैं। वो स्वर्गलोक का राजा है इंद्रदेव, और देवताओं कौन है? जैसे आदित्य, वसु, ये सब है, अग्नि, चंद्र, वरुण, सूर्य, ये सब है स्वर्गलोक के रहने वाले। स्वर्गलोक के ऊपर है महरलोक, जहां महर्षियों ने रहते हैं। महरलोक के ऊपर है जनलोक, वहां भी जो ऋषियों बहुत साधन के द्वारा उन्होंने वहां विराज करते हैं। महरलोक, जनलोक, उसके ऊपर है तपोलोक, और सबसे ऊपर है सत्यलोक, जहां ब्रह्मा जी विराज करते हैं। और ये ऐसे ब्रह्मलोक के परे या सत्यलोक के परे है ब्रह्मांड का अष्ट आवरण। ये अष्ट आवरण के परे है कारण समुद्र, और कारण समुद्र के परे है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति या चिदाकाश में अनंत ब्रह्म, अनंत वैकुंठ लोक है, जहां भगवान अपना चतुर्भुज नारायण रूप में अपना भक्तों के साथ विराज करते हैं। और वैकुंठ के परे, वैकुंठ के ऊपर भाग में है अयोध्या, जहां भगवान श्री रामचंद्र का लीला, नित्य लीला विराज हो रहा है। अयोध्या के भी परे हैं द्वारका, द्वारका के परे मथुरा मंडल, और मथुरा मंडल के केंद्र बिंदु या शीर्ष स्थान है गोलोक वृंदावन। ये है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का वर्णन, जियोग्राफी। हमारा जो जियोग्राफी है वो थोड़ा कुछ केवल हमारा जियोग्राफी में क्या है, आजकल का आधुनिक जो जियोग्राफी या भूगोल शास्त्र जो पाठ होता है, उसमें केवल इस पृथ्वी का ही वर्णन है। इस पृथ्वी में उनका वर्णन कैसा है, ये समुन्दर और छह महादेश बस। और एडवांस जियोग्राफी में, एस्ट्रोलॉजी में कुछ ग्रह नक्षत्र का विचार होता है, परंतु हमारा जो वैदिक जो ज्ञान है उसमें पूर्ण ज्ञान इस रूप से वर्णन हुआ है। तो ये शरीर के द्वारा हम कभी ऊपर जा सकते हैं, कभी नीचे गिर सकते हैं। प्रकृति क्रियमानानि गुणई कर्मानि सर्वसा। इस भौतिक जगत में गुण और कर्म के अनुसार सब कुछ हो रहा है। प्रकृति का तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो गुण के अनुसार हमारा कार्य होता है और उस कार्य के अनुसार हमारा स्थिति होता है। कार्य का फल या कर्म के अनुसार हमारा स्थिति होता है। कभी कुछ कर्म के कारण हमें मनुष्य शरीर मिलता है और जब हम बुरा काम करते हैं, पाप काम करते हैं तो हम गिर जाते हैं, तब पशु शरीर, जानवर का शरीर मिलता है या पंछी का शरीर या ऐसे कोई कीट, कीड़े, पतंग, पेड़ पौधे का शरीर मिलता है। ये नीचे गिरना, गिरने का कारण, पाप कार्य के कारण, पाप कर्म करने से ये ऐसा शरीर मिलता है। जिस शरीर में चेतना का विकास सही रूप से नहीं होता है और प्रकृति के द्वारा हमें बहुत कष्ट प्राप्ति होता है। और जब पुण्य कर्म होता है, पुण्य कर्म के कारण ऐसा शरीर मिलता है जिस शरीर के द्वारा हम ऊर्ध्व लोक में जा सकते हैं, जैसे स्वर्ग लोक में जा सकते हैं। आप तो जानते हैं ना, पुण्य कर्म के कारण स्वर्गलोक में स्वर्गलोक प्राप्ति होता है। और स्वर्गलोक से भी परे है महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। परंतु ये भी ऊपर का जो लोक है वो भी इस भौतिक जगत का ही एक स्थान है, इस ब्रह्मांड का ही, भौतिक जगत का एक स्थान है। परंतु हमारा जीवन का असल उद्देश्य क्या है या क्या होना चाहिए? हमारा जीवन का असल उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जहां से आए हैं वहां वापस चले जाए। इसका ही उपदेश भगवान भगवत गीता में दे रहे हैं। गीता के शुरू में ही अर्जुन को भगवान जब उपदेश देना शुरू किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया ये शरीर और आत्मा में अंतर क्या है। ये शरीर भौतिक है परंतु आत्मा चेतन है। शरीर जड़ है, ये शरीर जड़ पदार्थ से, भौतिक पदार्थ से ये शरीर का तैयारी हुआ है। परंतु आत्मा इस शरीर में रहने के कारण ये शरीर में चेतना आया, जीवन आया। और जब तक आत्मा शरीर में रहेगा तब तक ही ये शरीर जिंदा रहेगा। जब आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है तो शरीर का मृत्यु होता है, मतलब ये जड़ शरीर फिर से जड़ हो जाता है। भौतिक पदार्थ जो है, जड़ पदार्थ जो है वो अचेतन है। जैसे ये टेबल, ये जड़ है, इस टेबल में चेतना है नहीं। ये पिलर जो है इसमें चेतना है नहीं। ये जमीन में चेतना है नहीं। परंतु हम और आप में चेतना है। कैसे, क्यों, क्यों चेतना है? हमारा ये शरीर भी तो जड़ है, पंचभौतिक है। ये टेबल जैसा है जड़ है, ये शरीर भी जड़ है, परंतु टेबल में चेतना नहीं है परंतु हमारा शरीर में चेतना है। क्यों है? क्योंकि शरीर में, इस शरीर में आत्मा है। जब आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है तब शरीर भी फिर जड़ हो जाता है। तब वो शरीर और ये टेबल के बीच कोई अंतर नहीं रहेगा। तो ऐसे भगवान अर्जुन को समझाया देखो अर्जुन, देह है और देही, देह का जो शरीर का जो मालिक, ये शरीर का परिवर्तन होता है, परंतु देही या शरीर का जो मालिक है उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि शरीर का परिवर्तन होता है, जैसे 5 साल की उम्र में हमारा एक प्रकार का शरीर था, 15 साल की उम्र में और एक प्रकार का शरीर का रचना हुआ, 25 साल में और एक प्रकार, ऐसे शरीर का परिवर्तन हो रहा है। परंतु शरीर का परिवर्तन होते होने से भी आत्मा या जो शरीर का जो मालिक है उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। 5 साल का आप, 15 साल का आप, 25 साल का आप और आज का आप, कोई अंतर है? आप तो वही आप ही हैं, परंतु केवल शरीर का ही परिवर्तन हुआ। तो भगवान ऐसे अर्जुन को समझाया, देखो अर्जुन, शरीर का परिवर्तन होने से भी जो असल व्यक्ति जो है उसका तो कोई परिवर्तन नहीं होता है ना? तो जब ये शरीर को छोड़कर वो चला जाएगा तो भी वो रहेगा, वही व्यक्ति ही रहेंगे। शरीर का परिवर्तन होने से हमारा कुछ परिवर्तन नहीं होता है। शरीर को छोड़ने से हमारा परिवर्तन होगा? नहीं। अर्थात शरीर को छोड़ने से शरीर का मृत्यु होगा, परंतु हम रहेंगे। और वो हम कौन है? भगवान कह रहे हैं कि वो है अजो नित्य शाश्वत अयं पुराण न हन्नते हन्नमाने शरीरे। वो जो आत्मा जो है, हमारा असल स्वरूप जो है, वो अज है, उसका कभी जन्म नहीं होता है, नित्य है। अज नित्य शाश्वत अयं पुराण न हन्नते हन्नमाने शरीरे। शरीर को हत्या करने से भी आत्मा का मृत्यु नहीं होता है, आत्मा को कोई हत्या नहीं कर सकता है। भगवान और बता रहे हैं, देखिए, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को कोई अस्त्र के द्वारा काट नहीं सकते। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, पावक का मतलब अग्नि, अग्नि के द्वारा इस आत्मा को जला नहीं सकता है, दहन नहीं किया जाता है। नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदायन्त अप, पानी के द्वारा इसको हम भिगा नहीं सकते हैं, और नायं शोषयति मारुतः, और वायु के द्वारा इसको हम सुखा नहीं सकते। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम, ये आत्मा अविनाशी है। अविनाशी तु तद्विद्धि, अर्जुन बहुत भली रूप से जान लो कि आत्मा को कभी नाश नहीं होता है, आत्मा अविनाशी है। तो ऐसे शरीर और आत्मा का अंतर क्या एक है, वो समझाने के बाद भगवान अर्जुन को धीरे धीरे कैसे आत्मा को, हमारा आत्मस्वरूप में हम स्थित हो सकते हैं, उसका निर्देश या उपदेश दे रहे हैं। उसका उपदेश भगवान दे रहे हैं। पहले कर्मयोग 3rd अध्याय में, 4th अध्याय में भगवान अपने बारे में बताया। 4th अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन और कृष्ण में क्या अंतर है। पहले भगवान बताया भौतिक पदार्थ और आत्मा में क्या अंतर है, ये शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। उसके बाद भगवान अर्जुन को बताया आत्मा और भगवान में क्या अंतर है। 4th अध्याय के शुरू में भगवान अर्जुन को बताया, देखो अर्जुन, ये 3rd अध्याय में जो ज्ञान हम तुमको प्रदान किया, कर्म योग, इस योग मैं पहले विवश्वान को दिया था। इमं विवश्यते योगम प्रक्तवान अहम अव्ययम विवश्वान मनोवे प्राहो मनोरीक्षा कुबे अब्रवीत। इमं विवश्यते योगं प्रक्तवान अहम अव्ययम, ये जो अव्यय योग है अर्थात ज्ञान है, इस ज्ञान को मैं पहले विवश्वान को दिया था, सूर्य देव को दिया था। उसके पश्चात सूर्य देव ने अपना पुत्र वैवश्यत मनु को इस ज्ञान प्रदान किया, मनु ने अपना पुत्र इक्षाकु को इस ज्ञान प्रदान किए थे, मनुर इक्षाकुबे अब्रवीत बताए थे। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, ऐसे इस परंपरा के क्रम से, गुरु शिष्य परंपरा के क्रम से इस ज्ञान राजर्षियों के माध्यम बह रही है। तब अर्जुन एक प्रश्न, स्वाभाविक प्रश्न कृष्ण को किया। अर्जुन ने बताया, देखिए आपका जन्म, हे कृष्ण आपका जन्म तो उस दिन हुआ है, परंतु विवश्वान का जन्म तो कितने पहले हुआ था। अपरंग भवतो जन्म परंग जन्म विवश्यतः कथमेतात् विजानीयाम् तमादो प्रक्तवानिति, कैसे मैं समझूंगा कि तुम इस ज्ञान को विवश्वान को दिया था। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। जय श्री श्री कौन था, तमादो प्रक्तवानिति, तुम कैसे, मैं कैसे समझूंगा कि इस ज्ञान को तुमने विवश्वान को दिया था। तब देखिए भगवान, अब अर्जुन और भगवान में क्या अंतर है, भगवान वो बता रहे हैं। भगवान बताए, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहं वेद सर्वानि न तंग वेत्थ परंतप। अर्जुन तुम्हारा बहुत बार जन्म हुआ, मेरा भी बहुत बार जन्म हुआ, परंतु तानि अहं वेद सर्वानि, मैं उस सारे जन्म के बारे में पूर्ण रूप से जानता हूं, परंतु न त्वंग वेत्थ परंतप, हे परंतप, हे अर्जुन, तुमको उस जन्म के बारे में, तुम्हारा पिछले जन्म के बारे में कोई याद नहीं है, तुम नहीं जानते हो। और भगवान तब बताया अर्जुन को, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिं शाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायाया। तुम्हारा भी जन्म हुआ और मैं जो बताया मेरा भी जन्म हुआ। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, मेरा भी जन्म हुआ, परंतु मेरा जन्म कैसा है, भगवान बता रहे हैं, मेरा जन्म, उनका जन्म कैसा है। भगवान का जन्म कैसा, भगवान पहले बताया मैं अजय हूं, अजय का मतलब जन्म रहित हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता है। अजय अपि, यद्यपि मैं अजय हूं, जन्म रहित हूं, अजोपि सन अव्ययात्मा, और यद्यपि मैं अव्यय हूं, और भूतानाम ईश्वरोपि सन, और सारे प्राणियों का ईश्वर हूं, फिर भी प्रकृतिं शाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायाया। मेरा जो परा प्रकृति है, उस प्रकृति के द्वारा, जोगमाया की प्रभाव से, आत्ममायाया, मेरा जो माया है जोगमाया की प्रभाव से, मैं संभवामि, भगवान नहीं कह रहे कि मैं जन्म लेता हूं, भगवान कह रहे कि संभवामि, मैं प्रकट होता हूं इस भौतिक जगत में। भगवान कभी जन्म लेते हैं, कभी ऐसे सीधा आते हैं, कभी एक ये पिलर थाम से स्तंभ से निकलते हैं, जैसे जैसे नृसिंह अवतार के रूप में भगवान आए थे, कभी भगवान ब्रह्मा जी के नाक से निकलते हैं वराह देव के रूप से। ऐसे किसी भी प्रकार जब भगवान अपना लीला विलास करने के लिए ऐसे भगवान प्रकट होते हैं, संभवामी आत्ममाया। क्यों तब भगवान बताया, क्यों भगवान आते हैं, आने का कारण क्या है भगवान का, क्यों आना पड़ता है भगवान। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म का ग्लानि होता है और अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब धर्म का ग्लानि होता है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब मैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी आत्ममाया। तो ऐसे भगवान अर्जुन और उनमें क्या अंतर है इसको समझाया है ना। अर्जुन और भगवान का में अंतर का मतलब क्या है, जीवात्मा और भगवान में अंतर क्या है। हम जीवात्मा हैं और भगवान परम आत्मा परम ईश्वर है। ये भगवान और जीव में अंतर है। हम भी आत्मा हैं, भगवान भी आत्मा है। हम चेतन हैं, भगवान भी चेतन है, परंतु हम क्षुद्र हैं और भगवान पूर्ण है। एक बूंद पानी भी पानी है और समुंदर भी पानी है, बूंद भी पानी समुंदर भी पानी, परंतु बूंद समुंदर नहीं है। कोई बोलता नहीं कि ये बूंद समुंदर है ना। वैसे ही जीव और भगवान में नित्य भेद या अंतर है। और बूंद जब समुंदर में रहता है तब समुंदर का जो गुण है वो भी मिलता है, जैसे चिंगार और आग। चिंगार भी आग है, परंतु चिंगार जब आग से निकल जाता है तब उसका जो अग्नि दाही का शक्ति जो है वो नष्ट हो जाता है, खो बैठता है। चिंगार जब आग से निकलकर भस्म में गिरता है तो भी भस्म बन जाता है, आग नहीं रहता है। वैसे ही हम असल में हम चेतन चिन्मय भगवान का अंश हैं, परंतु जब हम भगवान से बिछोड़ जाते हैं तब और भौतिक जगत में गिरते हैं तो हम भी भौतिक बन जाता है। जैसे आज हम ये हमारा जो पंचभूत से बना हुआ जो शरीर, ये शरीर को मेरा स्वरूप समझ रहा हूँ है ना। ये शरीर क्या है, ये शरीर भौतिक है, जड़ है, परंतु हम सोचते हैं कि ये हमारा शरीर ही मैं हूँ, परंतु असल में हम कौन है, हम चेतन आत्मा है। हमारा जो आध्यात्मिक गुण जो है सच्चिदानंद, वो गुण हम खो बैठे हैं। परंतु जब आप सोचिए चिंगार आग से निकलने के कारण उसका जो वो भस्म बन गया, तो अगर उसको फिर आग में डालने से क्या होगा, फिर आग बन जाएगा। तो ऐसे ही जब हम भगवान के साथ अपना संपर्क जोड़ लेते हैं तब हम अपना आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त हो जाते हैं। तो ये भगवान के साथ युक्त होने का जो पंथा है, तरीका है, उसे ही योग कहा जाता है। योग का मतलब क्या है, योग का मतलब युक्त होना है ना। योग 2+2 = 4, दो जब दो के साथ जोड़ जाते हैं तो चार हो जाता है। तो योग की मतलब है युक्त होना, किसके साथ युक्त होना, भगवान के साथ युक्त होना। भगवान के साथ युक्त होने का जो तरीका है, पद्धति है, उसे योग कहा जाता है। जो भी तरीका भगवान के साथ हमें जोड़ देते हैं वो ही है योग। विभिन्न प्रकार का योग होता है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग। तो इस अध्याय में, षष्ठ अध्याय में भगवान अर्जुन को इस अष्टांग योग के बारे में समझाया। और यहां अर्जुन ने क्या कह रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं भगवान को, मेरे लिए संभव नहीं होगा। आप जो बताएं ये मेरे लिए संभव नहीं होगा। अर्जुन ऐसे सही ढंग से बोल रहे हैं कि ये मेरे लिए संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मन चंचल है, मन को स्थिर करना ही योग का, अष्टांग योग का उद्देश्य है। जैसे मैं बता रहा था, आसन, आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बारे में थोड़ा विचार हम थोड़ा कर चुके हैं, फिर भी प्राणायाम कितना कठिन है। देखिए, हमारा जो श्वास लेने का जो पद्धति है उसका तीन क्रिया होता है उसका। एक है श्वास लेना, श्वास छोड़ना और श्वास को रोकना। श्वास त्यागने को क्या बोलता है, रेचक। श्वास लेने को जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, पूरक। और श्वास को अंदर में रखने का जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, कुंभक। तो ये तीन प्रक्रिया होता है श्वास को। तो प्राणायाम जो है, उस प्राणायाम अभ्यास के द्वारा योगी क्या करते हैं, वो अपना श्वास का जो प्रक्रिया वो बंद कर देते हैं। कुंभक के द्वारा ये श्वास की प्रक्रिया बंद कर देते हैं। मतलब रेचक और पूरक, श्वास त्यागना और श्वास लेने का जो क्रिया है उसको बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस प्राणायाम के द्वारा योगी अपना इंद्रिया को वश में लाते हैं, मन को वश में लाते हैं। और उसके बाद आता है प्रत्याहार। इंद्रिया के माध्यम हमारे चेतना बाहर निकल रहा है भौतिक वस्तुओं के प्रति। आंखों के द्वारा हम दर्शन करते हैं, कान के द्वारा हम श्रवण करते हैं, नाक के द्वारा हम घ्राण लेते हैं, जिह्वा के द्वारा हम रस आस्वादन करते हैं और त्वचा के द्वारा हम स्पर्श करते हैं। तो ये इंद्रिया के द्वारा हमारा चेतना इंद्रिया के विषय के प्रति धावित तो हो रहा है। धायते विषयान पुंश संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते। धायते विषयान पुंश, हमारे चेतना इंद्रिय के द्वारा इंद्रिय के विषय के प्रति जा रहा है, धावित तो हो रहा है। धायते विषयान पुंश, परंतु प्रत्याहार जो है उसको संवरण कर लेता है, उसको खींच लेता है, सारे इंद्रिया को, अनुभूति जो है उसको अंतर्मुखी कर लेते हैं और इंद्रिया की अनुभूति बाहर की तरह नहीं जाता है। ये है प्रत्याहार। और इस प्रत्याहार के बाद आता है ध्यान। ऐसे घर में बैठ के आंखें बंद करके ही ध्यान नहीं होता है, जैसे आजकल कुछ आदमी कर रहा है और सिखा भी रहा है, ध्यान कर रहा है ऐसे आंखें बंद करके, परंतु क्या हो रहा है, मन में चिंतन हो रहा है। इसके बारे में भगवान कह रहे हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण। मन के द्वारा कर्मेंद्रिय की कर्मेंद्रिया ने संयम्य कर्म इंद्रियों को संयम करके ज आस्ते मनसा स्मरण मन की मन में स्मरण हो रहा है किसका विषय के बारे में तो उसको भगवान क्या कह रहे हैं मिथ्याचार से उच्चते कर्मेंद्रियानि संयम्य ज आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा इंद्रिया को संयम किया है परंतु इंद्रिया की विषय की भोगने के बारे में मन में चिंतन हो रहा है वो क्या अध्ययन हो रहा है भगवान कह रहे हैं मिथ्याचार से उच्चते वो मिथ्याचारी है झूठ आचरण करने वाला है वो ध्यान नहीं कर रहा है तो असल सही ध्यान का जो प्रक्रिया है वो करने के लिए हमको इंद्रिया को वश में लाकर इंद्रिया को पूर्ण रूप से अंतर्मुखी करने के बाद मन को एकाग्र करने का संभावना होता है वो है योग की प्रक्रिया ध्यान ध्यान के बाद धारण और उसके बाद समाधि जब हृदय में विराजमान परमात्मा के रूप में विराजमान भगवान को दर्शन होता है तब उस स्थिति को समाधि कहा जाता है और उस समाधि स्थिति में मनोभाव कैसा होता है आचरण कैसा होता है भगवान अर्जुन को इस पहले श्लोक में कुछ बताए थे और सुनने के बाद अर्जुन इस श्लोक में क्या कह रहे हैं षष्ठ अध्याय का 33 श्लोक में भगवान को अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि मेरे लिए संभव नहीं होगा अर्जुन उवाच यो यं योगस्तया प्रक्त साम्ये न मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलात्तात् स्थितिं स्थिराम् हे मधुसूदन अपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है ये अर्जुन का सत्य वचन है सही अभिव्यक्ति है अर्जुन भगवान को सही ढंग से पूछ रहे हैं हमें क्या करना चाहिए तो भगवान जब बताया अष्टांग योग के बारे में अर्जुन बोला ये मेरे लिए संभव नहीं होगा तो ऐसे ये षष्ठ अध्याय में और उसके बाद धीरे धीरे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं उनको क्या करना चाहिए और अंत में अष्टादश अध्याय में भगवान गीता के अंत में क्या निर्देश अर्जुन को दिया बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच तुम्हारे जितने सारे कर्तव्य हैं तुम सोचते हो तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हारा धर्म है सर्वधर्मान परित्यज्य वो सारे कार्य का परित्याग करके तुम केवल मेरा शरण ले लो माम एकम केवल मेरा ही शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच तब मैं तुमको सर्व पापेभ्यो सारे पापों से मोक्षयिष्यामि मुक्त कर दूंगा मा शुच कोई चिंता का कोई कारण नहीं है सोचो मत तुम अगर अपने आप को मेरे पास समर्पण कर दोगे तो मैं पूर्ण रूप से तुम्हारा देखभाल करूंगा ये भगवान का प्रतिश्रुति है और वो जो पद्धति है वो ही है आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन और भक्ति हरे कृष्ण कोई प्रश्न है किसी को हाँ गिव द माइक्रोफोन टू माइक्रोफोन
हरे कृष्ण आज।
महाराज जी आपने बताया कि ऊपर के जो लोक हैं उनमें देवलोक बताया या स्वर्ग लोक बताया, स्वर्ग लोक के ऊपर सत्य लोक है, तो सर मुझे समझाइए कि ये गुरु लोक या सिद्ध लोक की स्थिति कहाँ पर है? सिद्ध लोक की स्थिति कहाँ है और सिद्ध लोक में कौन जाते हैं या हाँ। किनको प्राप्त होता है? हाँ। थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए।
हाँ। ये जो महर लोक, तपल जनलोक और तपलोक हाँ। जो है हाँ। उसका सही ढंग से सरल भाव से सिद्ध लोक कहा जाता है।
अच्छा।
हाँ। ये तो जो
उसमें हाँ। वो सिद्ध लोक ही को ही वो प्राप्त होता है, सिद्धों को प्राप्त होता है क्या?
हाँ। और सिद्ध लोक में हाँ। हर व्यक्ति को योग सिद्धि है। हाँ। जैसे योग योग का जो अष्ट सिद्धि हाँ। होता है, अनिमा हाँ। लघिमा हाँ। महिमा हाँ। प्राकाम्य काम वशयिता, ये जो अष्ट सिद्धि है हाँ। वो सारे सिद्धि उनमें रहता है।
लेकिन सच्चे सिद्ध तो वो सिद्धियों की तरफ जाते ही नहीं है।
हाँ।
सच्चे सिद्ध जो होते हैं वो सिद्धियों की तरफ नहीं जाते, वो तो परमात्मा की तरफ जाते हैं। फिर उनको ये बता कि उनको ये लोग वो ये भी उनली लोग उसी लोग में जाते हैं।
ये तो मैं बताया कि ये भी भौतिक जगत का एक अंश है, बल्कि आध्यात्मिक जगत जो है ये भौतिक जगत के परे है, ब्रह्मांड के परे है, विरजा या कारण समुद्र उसके परे है, ब्रह्म ज्योति के परे है वैकुंठ, ये ब्रह्मांड से बहुत दूर है। तो ये जो स्थिति जो है ये केवल ब्रह्मांड में ही ये होता है, परंतु ब्रह्मांड से परे, इस भौतिक जगत के परे है वैकुंठ लोक या भगवत धाम।
बहुत सुंदर सर।
तो भक्ति के द्वारा हम भगवत धाम में जा सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर।
अच्छा हाँ बताइए।
प्रातः स्मरणीय गुरु जी, राधा रानी महारानी के परम प्रिय मनमोहन भगवान श्री कृष्ण युद्ध में अर्जुन को कहते हैं युद्ध कर, और स्वयं रणछोड़ बन जाते हैं।
स्वयं
रणछोड़ बन जाते हैं
हाँ।
तो हम ये जानना चाहते हैं कि सुई की नोक में से उनने जो हाथी निकाल दिया है, क्यों? स्वतः तो रण से रणछोड़ हो गए और अर्जुन को कहते हैं कि तू युद्ध कर।
देखिए हाँ, हम जैसे जीव और भगवान में अंतर है, जीव का जो कार्य है और भगवान का जो कार्य है, दो में अंतर ये है कि भगवान का जो कार्य है वो अपना लीला है हाँ, अपना लीला विलास करके भगवान ऐसे सारे कार्य साधन करते हैं, सब चमत्कार हो जाते हैं हाँ। जैसे हमारे लिए चोरी करना ठीक नहीं है, परंतु भगवान चोरी करते हैं, है ना? वो बचपन में मक्खन चुराते थे हाँ, और हर सब व्यक्ति का दिल चुराते हैं हाँ, चोराग्रगण भगवान हाँ, सबसे बड़ा चोर है। भगवान चोरी कर सकते हैं क्योंकि वो पर उस सारे संसार के मालिक हैं। जो मालिक है वो अगर चोरी करेगा वो क्या चोरी होता है हाँ? मालिक जो है, जो उनका है उसको चोरी करने का क्या जरूरत है? सारे संसार भगवान का है, तो भगवान जो जब लेते हैं वो क्या चोरी होता है हाँ? वो लीला होता है हाँ? तो ये है भगवान और जीव के बीच अंतर। और जैसे आप बोले, अर्जुन को बोल रहा है कि तुम लड़ाई करो, और भगवान खुद हाँ रणक्षेत्र छोड़ के रणछोड़ बन गए हैं हाँ? भाग गए हैं, परंतु भाग के क्या किया हाँ? भगवान हाँ? जब भागा हाँ? भाग के क्या किया?
द्वारका पहुंचे
हाँ हाँ हाँ, द्वारकापुरी का सूचना किया। और एक बार देखिए, भगवान भागा हाँ? भाग के क्या हुआ? मुचुकुंद के पास ले गया और उसको भस्म कर दिया। तो ऐसे भगवान जो ये जो करते हैं वो लीला हैं। भगवान तो स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं, अपने इच्छा के मुताबिक उन्होंने जो कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं, परंतु हम नहीं कर सकते हैं। उसीलिए भगवान को अनुकरण नहीं करना चाहिए, भगवान का अनुसरण करना चाहिए। विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का जो लीला है उस लीला का कभी अनुकरण नहीं करना चाहिए। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का लीला का कभी अनुकरण नहीं करना चाहिए। अगर हमको अनुकरण करना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का ही अनुकरण करना चाहिए। ये है भगवान का लीला का में भी अंतर,
हरे कृष्ण
है ना। जब इसके कारण भगवान जब बोलते हैं तुम लड़ाई करो तो अर्जुन का कर्तव्य बना लड़ाई करना। अर्जुन ये सवाल नहीं पूछा कि आप तो रण छोड़ के भाग गए तो हमको क्यों भागना नहीं दे रहे हैं, है ना। अर्जुन नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का कर्तव्य है भगवान को जो निर्देश है उसको पालन करना। हम नहीं कह सकते हैं कि भगवान जो कुछ कर रहे हैं हम भी वैसे करेंगे, वो अपराध हो जाता है। विशेष रूप से लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का जो लीला है उसको अनुकरण हम नहीं कर सकते।
हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण। अच्छा उनका
हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण
गुरुजी, ये कृष्ण के साथ हमेशा राधा का ही नाम जोड़ा गया है, राधा को ही पूजा जाता है, पर उनकी पत्नी का नाम कहीं भी नहीं है।
किसका?
कृष्ण के साथ हमेशा राधा का ही नाम लिया गया है, उनकी पत्नी का नाम कहीं नहीं आता, ऐसा अच्छा। क्यों?
पत्नी का नाम होता है। देखिए कृष्ण का लीला, हाँ आप बैठिए। कृष्ण का लीला तीन जगह में होता है। कृष्ण का लीला एक तो वृंदावन में, मथुरा में और द्वारका में। कृष्ण ही हैं परंतु तीन जगह में उनका लीला हो रहा है। तो वृंदावन का जो कृष्ण है उनके साथ अपना लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। तो जब हम राधा के संबोधन करते हैं तो वो कृष्ण है वृंदावन के कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। और द्वारकेश कृष्ण जो है उनके साथ जब हम उनको जब हम संबोधन करते हैं तब उनके साथ रुक्मिणी का संयोग होता है। जैसे रुक्मिणी द्वारकाधीश है ना, द्वारकाधीश, द्वारका का जो अधीश है उनका पत्नी कौन है? रुक्मिणी। तो रुक्मिणी द्वारकाधीश, राधा कृष्ण। अयोध्या में रामचंद्र, उनके साथ सीता, सीता राम। वैकुंठ में नारायण, लक्ष्मी नारायण, है ना। ऐसे भगवान जब अपना विस्तार करते हैं अपने आप को तो उनके साथ साथ अपना लादिनी शक्ति का भी विस्तार होता है। और उनका संबोधन तब ऐसे होता है जैसे लक्ष्मी नारायण, सीताराम, रुक्मिणी द्वारकाधीश और राधा कृष्ण। आज सुबह कुछ प्रश्न था, समय नहीं था तो इसलिए जवाब नहीं दे सका। तो आपका नाम, आपका नाम वहाँ है श्रीकांत। अच्छा श्रीकांत जी ने कुछ प्रश्न किए थे तो ये प्रश्न का मैं वादा किया था कि मैं शाम को प्रश्न का जवाब देंगे। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य भगवान से दुख मांगता नहीं है पर भगवान उसे दुख देता है, ऐसे क्यों? देखिए भगवान दुख नहीं देते हैं, हम खुद दुख को बुलाते हैं। भगवान बोलते हैं तुम मेरा साथ रहो, भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे साथ रहो। हम बोला नहीं, मैं आपको नहीं मानता हूं, आपको नहीं पहचानता हूं, आपको मैं नहीं चाहता हूं, ये कहकर उनको छोड़कर हम चले गए। तो आकर इस भौतिक जगत में हम आया। तो भौतिक जगत का जो नियम है, भौतिक जगत का नियम क्या है, प्रकृति क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः। प्रकृति में जो कुछ होता है गुण और कर्म के अनुसार होता है। तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमो ये तीन गुण के द्वारा प्रभावित होकर हम कार्य करते हैं और उस कार्य का जो फल है उसे कर्म फल कहा जाता है और उस कर्म का फल हमें मिलता है। हाँ, जब हम सत्वगुण में काम करते हैं तब हमें सुख मिलता है, जब हम रजो और तमोगुण में काम करते हैं तो हमें कष्ट मिलता है। तो हम जब ऐसे रजोगुण के द्वारा प्रभावित होकर या तमोगुण के द्वारा प्रभावित होकर काम करते हैं, विशेष रूप से तमोगुण के द्वारा प्रभावित होकर जब हम पाप काम करते हैं, जब पाप काम करता है तो क्या होता है, कोई जब बुरा काम करता है क्या होता है, पुलिस आकर उसको पकड़ के ले जाता है ना, उसको न्यायाधीश के पास ले जाता है, वहां विचार होता है और विचार से क्या होता है, दंड मिलता है। तो हम अगर बुरा काम करेंगे तो हमको दंड मिलेगा, मिलेगा ना, तो वो दंड के कारण, दंड स्वरूप हमें ये दुख मिल रहा है ना। तो आप बताइए ये दंड क्या भगवान दे रहे हैं और हम खुद अपना भाग्य को तैयार कर रहे हैं, दुर्भाग्य हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। भगवान की जो जितनी ज्यादा भक्ति करता है उसके उतने ही ज्यादा दुख देता है और जिस व्यक्ति में हम ज्यादा आसक्ति रखते हैं उसे वो भी छीन लेता है, क्यों ये सही है। अच्छा देखिए, भगवान को भक्त बनने से दुख मिलता है, आपको क्या ये विचार है कि भगवान को भक्ति करने से दुख मिलता है? हाँ, आप भगवान को भक्ति किया है तो क्या मिला, दुख मिला है, बताइए कैसे मिला है। या अच्छा, तो मैं प्रश्न ये करूंगा कि भगवान को भक्ति करने के बाद दुख मिला या दुख मिलने के बाद भगवान को भक्त बना? हाँ, भक्ति करते रहते थे तो। अच्छा देखिए, दुख जो है, दुख का मतलब क्या है, दुख का मतलब जो कुछ हम चाहते हैं वो जब नहीं मिलता है तो उसे हम दुख कहते हैं, जो कुछ हम चाहते हैं वो जब मिल जाता है तो उसे हम सुख कहते हैं। अच्छा, तो ये सुख और दुख, हरि बोल और गाय हाथ दियो ना, ये सुख और दुख जो है ये भौतिक जगत का है ना। परंतु भगवान का जो भक्ति है वो क्या भौतिक जगत का है या आध्यात्मिक जगत का है? भगवान का भक्ति जो है वो केवल भगवान का प्रति ही होता है ना, भक्ति भगवान के लिए होता है। तो भगवान के प्रति हमारा अगर भक्ति हुआ तो आप जैसे बोलते हैं जिसके प्रति आसक्ति होता है उसको छीन लेते हैं, भगवान के प्रति अगर आसक्ति हुआ, भक्ति का मतलब भगवान के प्रति आसक्ति, तो भगवान के प्रति जब आसक्ति हुआ तो भगवान के वो आसक्ति छीन लेंगे नहीं? तो आप बताइए, भक्ति करने से आसक्ति छीन लेता भगवान? परंतु जो आसक्ति हमारा भक्ति का प्रतिबंधक होता है, बाधा स्वरूप होता है, उसको भगवान अगर हटा दिया तो वो तो हमारे लिए ये अच्छा ही है ना। जो वस्तु हम चाहते हैं उस वस्तु को प्राप्ति के लिए अगर जो बंधन था, जो बाधा था, उसको अगर कोई निकाल दिया, उससे क्या हमें हर्जा हुआ, नुकसान हुआ या फायदा हुआ? तो आप बताइए, भगवान को भक्ति करने से क्या दुख मिलता है? भगवान को भक्त, देखिए असल में सुख और दुख जो है ये भौतिक जगत का ये है, परंतु हम जो चाहते हैं वो ना तो सुख है या दुख है। हम जो चाहते हैं वो है आनंद, और इस भौतिक जगत में हमें कष्ट मिल रहा है क्योंकि इस जगत का स्थिति ही ऐसा ही है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये भौतिक जगत का स्थिति कैसी है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार इस जगत में है ही है। तो ये जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये दुख दोष अनुदर्शनम, तो ये जो भौतिक जगत का जो क्लेश है, कष्ट है, वो कष्ट का जब थोड़ा सा कम होता है तो हम उसे सुख कहते हैं। जो कष्ट का जो निवृत्ति होता है, कम होता है, तो उसे ही सुख कहता है। परंतु हमें जो मांगना, असल चाहना जो है, वो दुख का पूर्ण विपरीत वस्तु है। वो क्या है? आनंद। आनंद इस भौतिक जगत में नहीं है। आनंद का छाया स्वरूप हमें सुख का प्रतीत हो रहा है। भगवान के साथ जब हम संपर्क जोड़ते हैं तब हमें आनंद मिलता है, और वो आनंद कैसा है? अहेतुकी अप्रतिहता। उस आनंद का कोई हेतु नहीं होता है। जैसे भौतिक जगत में जो कुछ हम चाहते हैं वो मिलने से हमें सुख होता है, मन में खुशी होता है, वो हेतु है। रुपया चाहता है, रुपया मिल गया, मन में बहुत खुश हुआ है। परंतु दो दिन बाद जब देखते हैं डाकू आके सारे रुपया लेकर चला गया तो हमारे मन में कष्ट होता है। ये भौतिक जगत का स्थिति है। परंतु आनंद जो है उसका कोई हेतु ऐसा नहीं है। वो कैसा है? हमारा हृदय से ही उसका उद्गम होता है और हमारा सारा चेतना को वो वश में ले लेता है। वो है आनंद। कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसको हम कोई ठिकाना पता नहीं लगा सकते, है ना? तो वो आनंद तब होता है जब हम भगवान के साथ अपना संपर्क जोड़ते हैं, और वो है अहेतुकी और अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब उसका जब प्रतिहत नहीं होता है, उसका कोई बाधा नहीं होता है और निरवच्छिन्न है, उसको कोई छेद नहीं होता है। वैसा ही ये आनंद का स्वभाव है। तो भगवान के साथ जब हम संपर्क जोड़ते हैं तो उस व्यक्ति ये हमें प्राप्ति होता है। और देखिए भौतिक जगत में हमारे जितने सारे संपर्क वो तो अनित्य है ना? हमारा स्थिति भी अनित्य है, दूसरे का स्थिति भी अनित्य है। कोई हमारे आगे जाएंगे, कोई हमारे बाद जाएंगे, है ना? सबको जाना पड़ेगा। तो इस भौतिक जगत में जितने सारे संपर्क, जितने आसक्ति हम ये कर रहे हैं, बना रहे हैं, आसक्ति प्राप्ति हो रहा है, अंत में सब दुख का ही कारण होगा, है ना? जब किसी के प्रति हमारा प्यार होता है, आसक्ति होता है, उसको हम चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, उसको अगर मृत्यु हो गया या वो कहीं चला गया तो मन में कष्ट होता है ना? परंतु भक्ति का मतलब क्या है? भगवान के साथ हमारा प्यार के संपर्क का स्थापन। तो वो संपर्क जब स्थापन हो जाता है तो उस संपर्क में कोई छेद आता है, कोई रुकावट आता है? नहीं, वो नित्य है। भगवान के साथ हमारा जो संपर्क है उसका कभी विच्छेद नहीं होगा। और उस संपर्क, वही संपर्क अगर हम स्थापन कर लिया तो हमारा जिंदगी में और कभी कष्ट का अनुभूति नहीं हो सकता है। तो अब बताइए भक्ति करने से क्या होता है? क्या होता है? आनंद मिलता है। तो आप क्यों बोला कष्ट मिलता है? भक्ति करने से आनंद मिलता है, कष्ट नहीं मिलता है। नहीं तो क्यों आदमी क्यों भक्ति करेंगे, है ना? देखिए हम तो अपने बारे में बोल सकते हैं कि हम जब आया इस मार्ग में तो मैं सोचा कि मैं 2 महीना इसको देखेंगे, अगर अच्छा नहीं लगा तो वापस चले जाएंगे। तो आज 30 साल होने चला तो 2 महीना अब तक पूरा नहीं हुआ है परंतु जितना ही दिन गुजर रहा है उतना ही मेरा भावना दृढ़ हो रहा है, आशक्ति दृढ़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस मार्ग में आने से ऐसा एक वस्तु मिला जो पहले कभी नहीं मिला था, और वो वस्तु अब मैं नहीं खोना चाहता हूं, इसलिए इस मार्ग को हम त्याग नहीं कर सकते। और वो वस्तु क्या है? आनंद, आनंदमय अभाषा। देखिए भक्ति का गुण कैसा है, आनंदाम बुद्धि वर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं। केवल आनंद का स्वाद ही नहीं, आनंद अम्बुधि, अम्बुधि का मतलब है समुन्दर। हम ये एक आनंद के समुद्र में डूब जाते हैं, और वो समुन्दर प्रतिपदन आनंद अम्बुधि वर्धनम, वो बढ़ता ही जाता रहता है। केवल समुद्र ही नहीं है, वो समुद्र केवल बढ़ता ही जाता रहे। और प्रतिपदन पूर्णामृतास्वादनम, हर पग में पूर्ण अमृत का आस्वादन होता है। तो आप बताइए भक्ति मार्ग में आने से क्या कष्ट मिलता है? देखिए पहले तो भगवान किसी को कष्ट नहीं देते हैं, कष्ट जो हमें मिल रहा है वो अपना कार्य के मुताबिक मिल रहा है ना। और भगवान के साथ अगर हम संपर्क जोड़ते हैं भक्ति के द्वारा, तब हमें आनंद ही मिलता है। मनुष्य जब भगवान के पूर्ण भगवान हो, पूर्ण शरणागत हो जाता है, उसे जो मांगेंगे वो देता है। कृपया ये समझाइए हरे कृष्ण। अच्छा ये दूसरा प्रश्न था, ये प्रश्न कौन दिया? वो आप ही का था। अच्छा अच्छा मनुष्य जब भगवान को पूर्ण शरणागत हो जाता है, उसे जो मांगते हैं मांगेंगे वो देते हैं। हाँ, जो मांगते हैं भगवान देते हैं। और मांगना भी, मांगने का भी स्तर होता है। पहले स्तर में जिसे कनिष्ठ अधिकार का स्तर, मतलब नया भक्त जो है वो क्या मांगता है? वो अपना सुख के लिए मांगता है, हमें ये दीजिए वो दीजिए, भगवान के पास ये मांगता है। तो भगवान देते हैं, परंतु भगवान तो हमारा शुभाकांक्षी है। अगर हम कुछ गलत वस्तु मांग लिया तो भगवान क्या देंगे? जैसे पिता देते हैं अपना बच्चा को, सब कुछ देते हैं, अगर बच्चा पिता के पास बोलेगा हम जहर मांगता हूं, हमें थोड़ा जहर दीजिए, तो पिता क्या देंगे? नहीं। जो वस्तु हमारे लिए लायक नहीं है, वो हमारे लिए कल्याणकार नहीं है, उसको नहीं देते। तो ऐसे हमें समझना पड़ेगा कि भगवान हमारे लिए जो शुभ है, जो मंगलमय होगा, वो ही देते हैं। अच्छा ये तो प्राथमिक स्तर में, और आगे जाके भक्त क्या मांगते हैं? आप ही का सेवा दीजिए भगवान। हाँ, मैं हूं दास तुहारा, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका नौकर हूं। तो नौकर को क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। तो मैं आपका नौकर हूं, तो हमें अपना सेवा दीजिए। अपने लिए कुछ नौकर के अपने लिए मांगता है? नहीं, वो अपने प्रभु के लिए, सेवा के लिए मांगता है। तो ऐसे जब भगवान भक्त जब भगवान के बारे में मांगते हैं, तो भगवान उसका पूर्ण कर देते हैं। अच्छा, शरीर पंच महाभूत से बना है एवं पंच तत्व में लीन हो जाता है, परंतु जब शरीर जीवित रहता है उस समय वो पंच महाभूत तत्व का अनुभव कर सकता है क्या? और कैसे प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है? कृपया समझाइए हरे कृष्ण। हाँ, शरीर पंच महाभूत से बना है, और हम आप जो बोला अंत में पंच महाभूत से ही पंच मिल जाएगा। हाँ, तो हम के ये समझ सकते हैं कि क्या ये पंच महाभूत कैसे हैं? देखिए जब तक हम अपना शरीर को अपना स्वरूप समझेंगे, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये है माया। ये शरीर का जो ऐसा एक जटिल स्थिति है, उस स्थिति में हम ऐसे फंस जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि ये शरीर किससे बना है। और जब हम ये शरीर का जो बंधन, शरीर का बंधन को बंधन से मुक्त होकर अपना आध्यात्मिक स्थिति में जब स्थित होते हैं, तब हमें पता चलता है कैसे ये पंच महाभूत से ये शरीर बना है ना। जब तक देहात्म बुद्धि रहेगा, ये शरीर को मैं अपना स्वरूप समझेंगे, तब तक ये संभव नहीं होगा। जब हम हमारे आत्मस्वरूप में स्थित होंगे, तब हमें ये समझ में आएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। आज काफी देरी हो गया, तो आज और कीर्तन नहीं करेंगे, आज यहीं हम खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।